चैप्टर 35 तालव्य श शंका। अपनी अनिष्ट की आशंका से उत्पन्न वितर्क प्रधान भय ही शंका है। उदाहरण, शंका तो भय का ही वितर्क प्रधान रूप है, जो आलंबन के दूरस्थ होने पर प्रकट होता है। इसमें वेग नहीं होता और न आलंबन उतना स्फुट होता है। रसमीमांसा पृष्ठ संख्या 21। शक्ति काव्य, पोएट्री एज एनर्जी। ऐसी काव्य रचना जो पाठकों और श्रोताओं को प्रभावित करके उनमें जीवन संघर्ष चेतना की उत्पन्न करती है। आलोचक डियोडोर वेट्स डंटन ने इसी दृष्टि से काव्य को वर्गीकृत किया। आचार्य शुक्ल ने डंटन के शक्ति काव्य को साधनावस्था के काव्य के अंतर्गत समाविष्ट किया है। उदाहरण, डंटन ने जिसे शक्ति काव्य कहा है वह हमारे प्रथम प्रकार के अंतर्गत आ जाता है, जिसमें लोक प्रवृत्ति को परिचालित करने वाला प्रभाव होता है। रसमीमांसा पृष्ठ संख्या 57। शब्द शक्ति, शब्द का अर्थ ग्रहण कराने वाली शक्ति शब्द शक्ति है। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति मानी गई है, क्योंकि इन्हीं शक्तियों के द्वारा काव्य में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ ग्रहण किया जाता है। उदाहरण, पर उन सब दशाओं का यथातथ्य चित्रण बिना हृदय की विशालता, भाव प्रसार की शक्ति, मर्म स्पर्शी स्वरूपों की उद्भावना और शब्द शक्ति की सिद्धि के नहीं हो सकता। शब्द शक्त्युद्भव ध्वनि, संलक्ष्य क्रम व्यंग ध्वनि के तीन भेद होते हैं, शब्द शक्त्युद्भव ध्वनि, अर्थ शक्त्युद्भव ध्वनि और शब्दार्थ शक्त्युद्भव ध्वनि। शब्द शक्त्युद्भव ध्वनि के विशेषता यह है कि जिस शब्द से जो व्यंग्यार्थ प्रतीत होता है, उस शब्द के स्थान पर उसका पर्याय रख देने से वह व्यंग्यार्थ प्रतीत नहीं होता। अर्थ शक्त्युद्भव ध्वनि में ऐसा नहीं होता। यहाँ किसी प्रत्युक्त शब्द से जो व्यंग्यार्थ निकलता है वह उस शब्द का पर्याय रख देने पर भी प्रतीत होता है। जहाँ शब्द और अर्थ सम्मिलित व्यंजकता से व्यंग्यार्थ की प्रतीति हो, वहाँ शब्दार्थ शक्त्युद्भव ध्वनि सम्मिलित होती है। उदाहरण, यह वस्तु व्यंजना अधिकतर अर्थ शक्त्युद्भव ध्वनि की है, शब्द शक्त्युद्भव ध्वनि की नहीं। अर्थात अर्थ के सादृश्य से ही लक्ष्य क्रम व्यंग जैसी में मिलता है, श्लेष के सहारे नहीं। जैसे ग्रंथावली भूमिका पृष्ठ संख्या 58। शब्द शोधन, रचना संदर्भ के अनुसार उपयुक्त शब्दों का चयन। उदाहरण, भावुक सूर ने अपना शब्द शोधन दूसरी ओर दिखाया है। सूरदास पृष्ठ संख्या 111। शरीयत, कुरान और हदीस द्वारा निर्दिष्ट विधि निषेध जिनका पालन प्रत्येक सूफी साधक को साधना के प्रथम चरण में करना पड़ता है। उदाहरण, शरीयत अर्थात धर्म ग्रंथों के विधि निषेध का सम्यक पालन यह है हमारे यहाँ का कर्म कांड। जैसी ग्रंथावली भूमिका पृष्ठ संख्या 142। शांत रस, नव रसों में एक सम स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट होकर रस दशा में पहुंचता है, तब शांत रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण, शांत रस का पुट तो बीच में बराबर मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास पृष्ठ संख्या 54। सहव, सूफी साधक को ईश्वर प्राप्ति से मिलने वाली पूर्ण शांति सहव कहलाती है। उदाहरण, इस हाल या प्रलयावस्था के पक्ष हैं त्याग पक्ष और प्राप्ति पक्ष। प्राप्ति पक्ष के अंतर्गत है वका, वजदा और सहव। सहव अर्थात पूर्ण शांति। जैसी ग्रंथावली भूमिका पृष्ठ संख्या 143। शास्त्र स्थिति संपादन, शास्त्रीय नियमों की औपचारिकता की पूर्ति, जहाँ काव्य की स्वाभाविक भाव संयोजन प्रक्रिया की उपेक्षा करने मात्र शास्त्रीय विधान की औपचारिक पूर्ति को महत्व दिया जाता है, वहाँ उच्च कोटि की स्वाभाविक एवं औचित्यपूर्ण रस व्यंजना नहीं हो पाती। शास्त्र स्थिति संपादन की रसमदा होती है। उदाहरण, रावण यदि राम के प्रति क्रोध या घृणा की व्यंजना करेगा तो रस के तीनों अवयवों विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के कारण शास्त्र स्थिति संपादन चाहे हो जाए, पर उस व्यंजित भाव के साथ पाठक के भाव का तादात्म्य कभी नहीं होगा। पाठक केवल चरित्र दृष्टा मात्र रहेगा। रसमीमांसा पृष्ठ संख्या 66। शिक्षावाद, उपदेशात्मक प्रवृत्ति, कला के माध्यम से शिक्षा देने की प्रवृत्ति, मंगल अमंगल के द्वंद में मंगल शक्ति की विजय दिखाकर समाज को शिक्षित करने की प्रवृत्ति। आचार्य शुक्ल अनुसार मंगल शक्ति की निरंतर विजय दिखाने से काव्य में जो एक प्रकार की शिक्षावाद या अस्वाभाविकता की आशंका की जाती है वह उचित नहीं है। अस्वाभाविकता तब आएगी जब प्रत्येक परिस्थिति में मंगल शक्ति की विजय दिखाई जाएगी। सच्चे कवि ऐसा नहीं करते, वे बीच बीच में दुष्ट पात्रों की दुर्दमनीयता दिखाकर सत पात्रों के कर्म सौंदर्य का विधान करते हैं और काव्य को अस्वाभाविक या कोरा उपदेशवादी होने से बचा लेते हैं। उदाहरण, मंगल अमंगल के द्वंद्व में कवि लोग अंत में मंगल शक्ति की जो सफलता दिखा देते हैं उसमें सदा शिक्षावाद या अस्वाभाविकता की गंध समझकर नाक भौं सिकोड़ना ठीक नहीं। अस्वाभाविकता तभी आएगी जब बीच का विधान ठीक न होगा, अर्थात जब प्रत्येक अवसर पर सत्पात्र सफल और दुष्ट पात्र विफल या ध्वस्त दिखाए जाएंगे। रस्ममांसा पृष्ठ संख्या 61। शिखरिणी, यह 17 वर्णों की छंद है। इसमें क्रमशः यगड़, मगड़, नगड़, सगड़, भगड़ तथा अंत में लघु गुरु का विधान होता है। 6 एवं 11 पर यति होती है। उदाहरण, इस बात का अनुभव तो बहुत लोगों ने किया होगा कि संस्कृत में मंदाक्रांता, श्रगधरा, मालिनी, शिखरिणी, इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा इत्यादि वर्ण वृत्तों में नाद सौंदर्य की पराकाष्ठा है। चिंतामणि भाग 2 पृष्ठ संख्या 147। शील, चारित्रिक उत्कर्ष जो मन की स्थायी वृत्ति पर आधारित होता है। उदाहरण, जिस परिस्थिति में भरत दिखाए गए हैं उससे बढ़कर शील की कसौटी हो ही नहीं सकती। गोस्वामी तुलसीदास पृष्ठ संख्या 72। आचार्य शुक्ल ने शील शब्द को विशेष महत्व देकर पारिभाषिक बना दिया है। सामान्यतः यह शब्द सदाचार और विनय का द्योतक है। आचार्य शुक्ल ने राम के व्यक्तित्व में शक्ति, शील और सौंदर्य की पराकाष्ठा का विवेचन करके इस शब्द की मूल्यवत्ता में वृद्धि की है। वे शैली सौंदर्य को शील निरपेक्ष सौंदर्य से अधिक महत्व देते हैं और इसका संबंध लोक मंगल से जोड़ते हैं। करुणा को शील संस्थापक भाव घोषित करते हैं। उनको मनोविकारों की विवेचना कर में उनके जीवन व्यापी संचरण और व्यक्ति की मनःवृत्ति निर्धारक स्वरूप का भी आकलन किया गया है। प्रबंध काव्यों में इनकी इस स्तर पर की गई सुनियोजित अभिव्यक्ति को प्रबंध कला की कसौटी माना जाता है। शील दशा, भावों की वह अवस्था जिसमें वे व्यक्ति की प्रकृति के स्थायी अंग बन जाते हैं। भावों के प्रकृति स्थित हो जाने की अवस्था होती है। कोई भी भाव शील दशा तक पहुंचा हुआ तब कहा जाएगा जब वह अपने आश्रय को अपने रंग में रंगकर स्वयं उसके व्यक्तित्व का अंग बन जाएगा। उदाहरण, भाव के इस प्रकार प्रकृति स्थित हो जाने की अवस्था को हम शील दशा कहेंगे। रस्ममांसा पृष्ठ संख्या 183। उदाहरण, उत्साह जब अनेकावसर व्यापी स्थायित्व की ओर चलेगा तब वह शील दशा को ही प्राप्त समझा जाएगा। रस्ममांसा पृष्ठ संख्या 184। शील वैचित्र, अंत प्रकृति वैचित्र, दृश्य काव्यों में चित्रित पात्रों की अंत प्रकृति में लक्षित होने वाला वैचित्र शील वैचित्र होता है। उदाहरण, यूरोप के दृश्य काव्य में शील वैचित्र या अंत प्रकृति वैचित्र की ओर ही प्रधान लक्ष्य रहता है, जिसके साक्षात्कार से दर्शक को आश्चर्य या कुतूहल मात्र की अनुभूति होती है। रस्ममांसा पृष्ठ संख्या 316। शुद्ध काव्य, रसात्मक, रमणीय एवं मर्मस्पर्शी काव्य, ऐसा काव्य जो नीति, शुक्ति एवं धार्मिक उपदेश आदि में मुक्त और शुद्ध रसात्मक अनुभूति से युक्त हो। उदाहरण, इससे शुद्ध काव्य की दृष्टि में देखने पर उसके बहुत से प्रसंग और वर्णन खटकते हैं, जैसे पातिव्रत और मित्र धर्म की उपदेश, उत्तरकांड में गरुण पुराण की ढंग का कर्मों का फलाफल कथन। गोस्वामी तुलसीदास पृष्ठ संख्या 46। शुद्धाद्वैत, वल्लभाचार्य का दार्शनिक सिद्धांत शुद्धाद्वैत के नाम से जाना जाता है। वल्लभाचार्य के अनुसार ब्रह्म माया संबंध रहित अर्थात शुद्ध है। वही एक अद्वैत तत्व है। वह जगत की उसकी लीला का विकास मात्र है। वह वास्तविक है, मायाकृत नहीं। जगत ब्रह्म का अविकृत परिणाम है। जीव ही ब्रह्म है। इसमें आनंद तत्व तिरोहित है। जो संबंध अग्नि और स्फुलिंग में है वही ब्रह्म और जीव में है। इस सिद्धांत को अविकृत परिणामवाद भी कहते हैं। उदाहरण के लिए, वल्लभाचार्य जी का अद्वैतवाद शुद्धाद्वैत कहलाता है। रामानुजाचार्य जी का अद्वैत के दो पक्ष चित्त और अचित से युक्त या विशिष्ट दिखाई देते हैं। वल्लभ ने यह विशिष्टता हटाकर ब्रह्म को फिर शुद्ध किया। सूरदास पृष्ठ संख्या 133। शुद्ध पुष्टि भक्ति, जो केवल भगवान के प्रेम में मग्न हो रहते हैं और भगवान का भजन कीर्तन जिनका व्यसन हो जाता है उनकी भक्ति शुद्ध पुष्टि भक्ति है। उदाहरण, चौथे प्रकार की शुद्ध पुष्टि भक्ति जिनमें होती है वे केवल भगवान के प्रेम में मग्न रहते हैं। सूरदास पृष्ठ संख्या 57। शुद्ध मनुष्यत्व, सभ्यता के कृत्रिम आवरण से युक्त सहज और शुद्ध मानवीयता। उदाहरण, प्रकृति के विस्तृत क्षेत्र में हमारा उनका कालिदास भेदभाव मिट जाता है। हम सामान्य परिस्थिति के साक्षात्कार द्वारा चीर कालव्यापी शुद्ध मनुष्यत्व का अनुभव करते हैं। रसमीमांसा पृष्ठ संख्या 151। शोक, इस वस्तु के नाश या अनिष्ट की प्राप्ति से होने वाली चित्त की व्याकुलता शोक कही जाती है। यह करुण रस का स्थायी भाव है। उदाहरण, शोक का चित्रण भी गोस्वामी जी ने अत्यंत हृदय दावक पद्धति से किया है। गोस्वामी तुलसीदास पृष्ठ संख्या 59। उदाहरण, प्रिय के दुख या पीड़ा पर जो दुख हो वह शोक है। प्रिय के कुछ दिन के लिए वियुक्त होने मात्र का जो दुख है वह विरह है। गोस्वामी तुलसीदास पृष्ठ संख्या 60। श्लेष, श्लिष्ट पदों के विधान द्वारा अनेक अर्थों का कथन श्लेष अलंकार है। श्लिष्टे पदै अनेकार्था अभिधाने श्लेष इस्यते, साहित्य दर्पण। उदाहरण, कवि ने श्लेष और अन्योक्ति द्वारा उभय पक्ष का वाक्य चातुर्य दिखाने का आयोजन बांधा है जिससे पाठक का कुछ भी मनोरंजन नहीं होता। जैसी ग्रंथावली भूमिका पृष्ठ संख्या 53। केशवदास के समान नहीं किया है कि पंचवटी का प्रसंग आया तो बस सब जाति फटी दुख की दुपटी करके अपना श्लेष चमत्कार दिखाकर चलते बने। गोस्वामी तुलसीदास पृष्ठ संख्या 90। शब्दालंकारों में जैसी ने वृत्ति अनुप्रास यमक और श्लेष का प्रयोग किया है पर संयम के साथ। जैसी ग्रंथावली भूमिका पृष्ठ संख्या 118। उदाहरण, यह ठीक है कि वाक्य की कुछ विलक्षणता जैसे श्लेष और यमक द्वारा श्रोता या पाठक का ध्यान आकर्षित करने के लिए भी अलंकार की थोड़ी बहुत योजना होती है पर उसे बहुत ही गौण समझना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास पृष्ठ संख्या 93। उदाहरण, केशवदास जी को अपने श्लेष यमक और उत्प्रेक्षा इत्यादि से फुर्सत कहाँ कि विस्तृत संबंध योजना के साथ प्रकृति का निरीक्षण करने जाएं। रसमीमांसा पृष्ठ संख्या 137। श्रम, 33 संचारी भावों में से एक है। यह श्रृंगार करुण आदि कई रसों को पुष्ट करता है। श्रीडाति हंति अंगानी मनोवेति श्रमः, इस प्रकार श्रम के अंतर्गत अंगों का अवसाद और मन खेद दोनों आ जाते हैं। काव्य में श्रम की स्वतंत्र व्यंजना भी होती है। उदाहरण, कुल बधु के श्रम की यह व्यंजना कैसी मनोहर है। यह श्रम स्वतंत्र है, किसी और भाव का संचारी होकर नहीं आया। गोस्वामी तुलसीदास पृष्ठ संख्या 69। श्रव्य काव्य, वह रसात्मक वाक्य रूप काव्य जो केवल श्रवण योग्य हो, जिसे अभिनय द्वारा रंगमंच पर प्रदर्शित न किया जा सके। यह दो प्रकार का होता है, पद्यमय श्रव्य काव्य और गद्यमय श्रव्य काव्य। उदाहरण, हमारे यहाँ के आचार्य ने श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य दोनों में रस की प्रधानता रखी। इसी से दृश्य काव्यों में उनका लक्ष्य तादात्म्य और साधारणीकरण की ओर रहता है। रसमीमांसा पृष्ठ संख्या 316। उदाहरण, साहित्य क्षेत्र के भीतर आने वाली रचनाओं के तीन रूप तो हमारे यहाँ पहले से मिलते हैं, श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य और कथात्मक गद्य काव्य। चिंतामणि भाग 2 पृष्ठ संख्या 151। श्रुति कटु, पद 200 में से एक है। जब काव्य में ऐसे पदों का प्रयोग होता है जो सुनने में कटु लगते हैं तो वहाँ श्रुति कटु दोष होते हैं। उदाहरण के लिए, श्रुति कटु मानकर कुछ वर्णों का त्याग, वृत्त विधान, लय अंत्यानुप्रास आदि नाच सौंदर्य साधन के लिए है। रसमीमांसा पृष्ठ संख्या 46।